بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي الحضرات. سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں آج لیٹ ہو گیا. جب ہم کلاس ٹو میں تھے غالباً تو ایک چھوٹا سا چٹکلا ہماری ٹیکسٹ بک میں تھا اردو کی کہ ایک اسٹوڈنٹ لیٹ ہو گیا تھا اسکول سے. تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ تم لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب چونکہ بارش بہت ہوئی ہے تو سڑک پر پھسلن اتنی تھی کہ میں ایک قدم آگے جاتا تھا دو قدم پیچھے پھسل جاتا تھا, تو چلتے چلتے دیر ہو گئی. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں ایک قدم آگے لیتا تھا دو قدم پیچھے پھسل جاتا تھا, لیکن لیٹ ہونے کا تعلق سڑکوں کی کھدائی سے ضرور ہے. ہم میں سے ہر ایک کی بمائے میرے یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت مشاہدہ عطا فرما دے, مجھے کشف عطا فرما دے. اور آپ کا تو نہیں کہتا لیکن مجھے اپنا پتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ کچھ کرامات عطا ہو جائیں تاکہ میں وہ لوگوں کو دکھا کے کچھ انہیں متاثر تو کر سکوں. لیکن یہ دعا کرنی نہیں چاہیے, اس لیے کہ رب تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے, انہیں قبول فرمانے والا ہے, انہیں پورا کرنے والا ہے. تو دعا کے بارے میں تینوں ہی چیزیں رب تعالیٰ کرتا ہے کہ انہیں دعاؤں کو سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے, انہیں پورا بھی کر دیتا ہے. تو جب ہم رب تعالیٰ سے مشاہدہ مانگتے ہیں, اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مشاہدہ عطا فرما دے, تو رب تعالیٰ تو انسان کو مایوس نہیں کرتا, رب تعالیٰ مشاہدہ عطا کر دیتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی روحانی کیفیات کو اس بلندی پر لے جائے بغیر جہاں مشاہدہ آتا ہوتا ہے, اس بلندی پر گئے بغیر اللہ سے دعا کے ذریعے مشاہدہ مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قوت مشاہدہ عطا فرما دیتا ہے یا صلاحیت عطا فرما دیتا ہے. تو پھر جب ہم مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں, اس مشاہدے کی تاب نہیں لا پاتے, تو ہمارے احوال بگڑنا شروع ہوتے ہیں, ہماری ذہنی کیفیات بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو انسان پھر کسی کام کاج کا رہتا نہیں, جسے عرف عام میں ہم مجذوب کہتے ہیں اور سائنس اسے نیم پاگل کہہ دیتی ہے, تو وہ کچھ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کوئی ہماری طرح کا شاگرد ہوگا, اس نے اپنے شیخ سے درخواست کی کہ شیخ میں رب سے بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے مشاہدہ عطا فرما دے, اور آپ سے بھی درخواست ہے میری کہ آپ مہربانی فرمائیے اور مجھ پہ نظر عنایت کر دیں اور مشاہدہ مجھے حاصل ہو جائے. شیخ منع کرتے رہے لیکن وہ صاحب باز نہیں آئے. تو ایک دن پھر شیخ نے تنگ آ کر کہا کہ اچھا تم پہلے ایک کام کر لو, اس کے بعد میں تمہیں مشاہدہ عطا کر دوں گا. उसको अपने सामने बिठाया और फरमाया कि तुम मखलूक में से इंसानों का तसव्वुर करो, बांधो तसव्वुर बांधो। तो उसने कहा कि हुजूर तसव्वुर बन गया कि अब ये तसव्वुर करो कि ये तमाम इंसान जो रूए जमीन पे बसते हैं वो एक हो गए हैं। तो उसने कहा ये तसव्वुर कर लिया मैंने, अब ये तसव्वुर करो कि ये तमाम इंसान एक अंगुष्ठी में बंद होकर तुम्हारे सामने पड़े हैं। तो देर तो लगी लेकिन कर लिया। कहा ये हो गया हुजूर। मुर्शिद ने फिर ये कहा कि अब तसव्वुर करो कि तमाम जिन्नात तुम्हारे सामने इकट्ठे हैं पूरी कायनात के। तो उसने तसव्वुर किया और तसव्वुर करके कहने लगा कि साहब कर लिया तसव्वुर, कभी इन्हें यकजा करो तसव्वुर में। वो यकजा हो गए, इन्हें अंगूठी में बंद करो। तो कर लिया। तो फिर शेख ने कहा कि अब यही अमल फरिश्तों के लिए दोहराओ। तो वो भी हो गया। तो उस पर शेख ने कहा कि ये तो हो गया, अब एक काम करो, इन तीनों अंगूठियों को एक अंगूठी में जमा करके उसका तसव्वुर बांधो। वो स्ट्रगल करते रहे, वो हो नहीं, अंधेरा छा जाए आंखों के सामने। तो काफी देर कोशिश के बाद कहा कि हजूर ये तो नहीं होता, अंधेरा छा जाता है। कहा कि इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि पहले रूह को उस बुलंदी तक ले जाओ कि उस बुलंदी पर पहुंच गया तुम्हें मुशाहिदा हासिल हो जाए। तो जब रब की तरफ से मुशाहिदा हासिल होगा तो फिर ये नहीं होगा, फिर अंधेरा नहीं छाएगा आंखों के सामने। इसी तरह अलूम का मामला भी है। चाहे वो इल्मे कुरान हो, इल्मे हदीस हो, इल्मे फिका हो, इल्मे तफसीर हो, या दुनियावी अलूम हो। तो दुनियावी अलूम का तो हम सबको तजर्बा है कि हम प्री स्कूल से शुरू होते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता क्लास 1, 2, 3 होते होते हम मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन ये सारा अमल मुहित है बहुत से सालों पर। वो डिपेंड करता है कि हमने क्या क्वालिफिकेशन हासिल की। तो वो इल्म हम थोड़ा थोड़ा हासिल करते रहते हैं, वो एब्जॉर्ब होता रहता है हमारे अंदर। तो जब एक क्लास का इल्म हमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका इम्तहान होता है हमारा। अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इससे अगले लेवल का इल्म हासिल करने की सलाहियत रखता है ये इंसान, तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो वो इल्म एब्जॉर्ब होता रहता है, हत्ता कि फिर हम स्कॉलर बन जाते हैं और स्कॉलर बन के फिर रिसर्च स्कॉलर हो जाते हैं। तो पहले थ्योरीज पढ़ते रहते हैं, एज रिसर्च स्कॉलर हम अलूम की नई थ्योरीज इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें बाद में आने वाले लोग जिस पर तहकीक करते हैं। लेकिन अगर हम ये कोताही कर लें कि जो ही क्लास 2 में पहुंचे हम पीएचडी के कोर्स को पढ़ना शुरू कर दें, तो फिर सवाय अंधेरा छा जाने के और कुछ नहीं होगा। रूहानी अलूम में भी यही है कि अगर शेख अकलमंद है, समझदार है, तो वो अपने शागिर्द की جسمانی ذہنی اور روحانی کیفیات ان تینوں کو اپنے سامنے رکھ کے مد نظر رکھ کے وہ بہت میئرڈ ڈوز دیتا ہے, بہت نپتلی ڈوز ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر ہمیں ایگزامن کرتا ہے اور وہ میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے, کسی کو وہ وہی ٹیبلٹ دے گا تو 0.5 mg کی ہوگی اس کی پوٹینسی, کسی کو 1 mg کی دے دے گا, کسی کو 500 mg کی بھی دے دے گا. وہ درحقیقت ہمیں ایگزامن کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہمارے جسمانی کیفیات کیا ہیں. تو شیخ ہمیں میئر کر کے, ہمیں ناپ تول کر کہ ہمارے اندر ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے, وہ ایک میئر ڈوز میں علم دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر آن ایوریج 35 years لگتے ہیں شاگردی اختیار کرنے سے لے کر ولایت کی سند ملنے تک, اس لیے کہ وہ بہت سلولی دیا جا رہا ہوتا ہے. اور وہی اچھا ہوتا ہے کہ آدمی ایبزارب کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے, ایبزارب کرتا ہے آگے بڑھتا ہے. اس کا دوسرا طریقہ جو شیخ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کے علوم کو بیک وقت لے کے چلتے ہیں. دنیاوی بھی روحانی بھی, دینی بھی اور روحانی بھی. تو ان کے شاگرد اگر وہ صحیح معنوں میں شاگرد ہیں اور شیخ نے ان پر محنت کی ہے, تو ایسے انسان سے جب آپ ملیں گے جا کے تو آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ اس انسان کے پاس کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی علم پر بات کریں وہ فرفر بولنے لگتا ہے, دینی علم پر بات کریں تو وہ فرفر بولتا ہے, روحانی علم پر بات کریں تو وہ روانی سے بولتا ہے. وہ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کا شیخ بہت ہی کامل ہوتا ہے. تو شیخ نے بہت اس کو, جیسے آٹے کی بوری ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ بوری کی کیپیسٹی 100 kilo ہے, تو ہم اس میں یکلخت اگر آٹا ڈال دیں تو 100 kilo کبھی نہیں آتا, مے بی 70 kilo 75 kilo. لیکن اگر تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور ساتھ بوری کو شیک کرتے چلے جائیں 100 kilo آسانی سے آ جاتا ہے. اس کے بعد گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے منہ کو سی بھی دیا جائے. تو علوم کے بارے میں بھی یہی ہے. ہمارے یہاں دینی علوم میں بھی اور روحانی علوم میں بھی اور شروع کے وقت میں تو دنیاوی علوم میں بھی جابر بن حیان جیسے لوگ بھی گزرے. بڑے بڑے اسٹالورٹس ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں دنیاوی علوم میں, مذہبی علوم میں, دینی علوم میں اور روحانی علوم میں. جناب امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ السلام, جناب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ دینی علوم میں سٹالورٹس ہیں. روحانی علوم میں ہمارے یہاں جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب جیسے بھی لوگ گزرے ہیں, جو بذات خود ایک بہت بڑا لیجنڈری فگر ہیں, اپنے اندر ہی ایک لیجنڈ تھے, بہت بڑا لائٹ ہاؤس. مولانا روم کو ایک جدت نصیب ہوئی और वो ऐसी है जो हमारे यहां बहुत कम लोगों को नसीब होगी कि अमेरिका और यूरोप, बिलखुसूस अमेरिका, मौलाना रोम की तालीमात पर बड़ी गहराई से उस पर तहकीक कर रहे हैं आजकल। ये उनका एक बहुत बड़ा एजाज है कि पूरी दुनिया में उनके अलूम पर, उनकी किताबों पर, उनकी कही हुई बातों पर तहकीक हो रही है, और करने वाले ज्यादातर नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। ये उन्हीं की ऑनर है। इनको शायद ये ऑनर इसलिए मिल गई कि ये अपने मुर्शद से, जनाब शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह साहब, उनसे मुलाकात से पहले मौलाना थे। तो आपने एक कमाल हासिल किया दुनियावी अलूम में, दीनी अलूम में, और जब मुर्शद से मुलाकात हो गई तो फिर रूहानी अलूम में भी। तो इनको बड़ी जल्दी कमाल हासिल हुआ, सिर्फ इसलिए कि इनकी बुनियादें बनी हुई थी दुनियावी अलूम में और दीनी अलूम में। तो जो कमाल फिर इन्होंने हासिल किया वो इस तरह का है कि उस पर गैर मुस्लिम तहकीक कर रहे हैं। इसी तरह का एक नाम हमारे यहां अकबर मोहियुद्दीन मोहम्मद इब्ने अरबी का भी है। लेकिन मसला इनके साथ एक बन जाएगा कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो इन्होंने अपने जहनी मयार से लिखी हैं, जो बहुत बुलंद है। तो अगर जैसे मैंने अर्ज किया था कि क्लास टू का स्टूडेंट पीएचडी की किताबों को पढ़ने लगेगा तो सवाए अंधेरों की और कुछ नहीं है। तो इनकी किताबें पढ़ने से पहले हमें अपने इल्मी सतह को, ख्वा वो दुनियावी इल्म हो, दीनी इल्म हो या रूहानी इल्म हो, उसको एक खास मर्तबे तक ले जाना होगा। उस मर्तबे पर पहुंचकर इल्म के जब हम इनको पढ़ेंगे तो एक नई रोशनी मिलेगी। मोहम्मद इब्ने अरबी, अकबर भी इनका, शेखुल अकबर इनका लकब है, इन्हें लोग शेखुल अकबर कहते थे, उस निस्बत से अकबर इनके नाम का हिस्सा बना। मोहियुद्दीन इनका लकब था कि दीन की तरवीज करने वाला, उसकी तजदीद करने वाला, उस वक्त की गर्द जो जम गई है दीनी तालीमात पर, उनको साफ करके दीनी अलूम को दोबारा चमका देने वाला मोहियुद्दीन उन मायनों में आता है। वो भी लकब इनका है, वो इनके नाम का हिस्सा हो गया। तो असल अपना नाम इनका मोहम्मद इब्ने अरबी था। तो अकबर मोहियुद्दीन मोहम्मद इब्ने अरबी ये कहलाए। गालबन इनकी पैदाइश अगर मुझे सही याद है तो 1665 ईस्वी की है, 25 जुलाई 1665, और इनकी डेथ गालबन 1740 की। 75 ईयर्स की उम्र पाई है इन्होंने, और 350 किताबें इनकी इन्होंने लिखी, और उसके अलावा एक किताब इनकी शायरी की भी है। इन्होंने बहुत से नए कंसेप्ट्स दिए और उन कंसेप्ट्स ने मुस्लिम मुआशरे पर बड़े गहरे असरात भी मरतब किए। इन्हीं की एक किताब रूहानी असफार सी किसी सार ने एक इक्तबास लेके मुझसे पूछा कि जनाब इब्ने अरबी साहब ने उसमें ये बात कही है कि इंसान का सफर हर वक्त जारी रहता है और वो सफर किस तरह हर वक्त जारी रहता है तो उसको उन्होंने अपने जुबान में यूं फरमाया कि उस तक सफर, दूसरा फेज है उसमें सफर, और तीसरा फेज है उससे सफर। यही गुफ्तगू करते हुए एक जमाने में मैंने अर्ज किया था कि ये रूहानियत की तालीम में दो दर्जात होती हैं हमेशा, कोई भी शेख इससे बाहर नहीं जाता, बल्कि जितने बड़े शेख होंगे, इल्म के जितनी बुलंदी पर पहुंचे हुए शेख, उतनी ही इसके वो ज्यादा पाबंद होंगे कि उलूम का एक हिस्सा तो वो है जो आम लोगों के सामने बयान किया जा सकता है, लेकिन उलूम का एक और हिस्सा है जो सिर्फ खवास के लिए है। खवास से मुराद ये नहीं जो हमारे यहां वीआईपीज हैं, बल्कि खवास से मुराद ये है कि वो लोग जो इल्म के में काफी आगे चले गए हुए हैं, जिनको शेख ने चुना है कि इनको मैं एडवांस लेवल का इल्म डिस्पेंस करूंगा, इनको वो ख्वास है। तो जब अलूम का वो हिस्सा बयान किया जाता है तो शेख बंद कमरे में सिर्फ उन्हीं मखसूस लोगों के सामने बयान करते हैं। इसी तरह ऐसे लोगों की लिखी हुई किताबों को, की लिखी हुई कही हुई बातों को हम जितनी बार भी पढ़ेंगे, जितनी बार भी सुनेंगे, उससे नए मायने हमें समझ आएंगे, इसलिए कि वो इतनी गहरी बातें होती हैं कि वो तह दर तह उसके मतलब निकलते हैं। तो जब हम एक मतलब समझ जाते हैं अच्छी तरह, उनकी कही भी उसी बात को जब दोबारा सुनेंगे, तो चूंकि हम उसका एक एक तह को हम समझ चुके, तो अगली तह खुद ब खुद हमारे सामने खुलती है। तो हम ये कहते हैं कि इस शेख की बात को जितनी बार सुनो, जितनी बार पढ़ो, नए मायने ही समझ में आते हैं। जनाब मोहम्मद इब्ने अरबी कि इस बात का मतलब भी इसी तरह दोहरा मतलब लिए हुए है, इसका भी दोहरा मतलब है। एक आम आदमी अगर सुनेगा तो वो इसको ये समझेगा कि ये जो उन्होंने कहा कि उस तक सफर, ये दुनियावी जिंदगी है हमारी जो हम गुजार रहे हैं, और इस पर नजर रहती है हमारी कि जो कुछ हम यहां कर रहे हैं कल को हमने इसका हिसाब देना है, तो यौमे हिसाब पर नजर रहती है। जब हमारी नजर यौमे हिसाब पर रहती है तो हमारे अमाल दुरुस्त होने लगते हैं। उसमें सफर जो यौमे हिसाब होगा, उस दिन जो कुछ बीतेगी, जिस जिसमें से हर आदमी गुजरेगा, जिस प्रोसेस से, वो उसमें सफर है। और हिसाब होने के बाद हर आदमी जब अपने अमाल के मुताबिक अप्रोप्रिएट जगह पर भेज दिया जाएगा। तो तीसरा हिस्सा इनकी बात का वो सफर है, ये वो है जो आम आदमी को समझाने के लिए बयान किया गया। इससे सफर ये तीसरा हिस्सा है। तो यौम हिसाब से आगे का सफर जो है वो इस उससे सफर हो गया। ये आम आदमी के लिए मतलब है, लेकिन इसके रूहानी मतलब भी हैं। रूहानी सफर में भी इससे मतलब है कि हम अगर हमारी नजर इस बात पर है कि हमें रब ताला का कुर्ब हासिल हो जाए, तो उसके लिए हम उसकी इताअत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, और इस तरह से बंदगी करते हैं जिस तरह से बंदगी करने का हक है। तो उस बंदगी के नतीजे में जब रब राजी होता है तो हमें अपना कुर्ब अता फरमाता है, अपनी दोस्ती अता फरमाता है। तो पहला हिस्सा उस तक सफर मुकम्मल हो गया उस बंदगी के जरिए से। जब हमें कुर्ब हासिल हो जाता है तो हम हालत मुशाहदा में जाते हैं, हमें मुशाहदा हासिल होता है, हमें कश्फ हासिल होता है, रब ताला अपने असरार की जिस हद तक वो चाहता है हर इंसान को उसकी इस्तात के मुताबिक सैर कराता है। तो उस रूहानियत में रहते हुए वो जो सफर करता है, जो मुशाहदे करता है, जो वारदात पेश आती है, जो वो महसूस करता है, ये वो सफर है जो उसमें सफर का हिस्सा है। तो तीसरा हिस्सा है उससे सफर। तो जब आदमी उन कैफियत से निकलकर इस हालत में चला जाता है कि मुझे सिर्फ रब चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, रब से भी कहने लगता है कि या बारी ताला मुझे तो तू चाहिए, तू अपना आप मुझे अता फरमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको ले जा, मुझे अपना आप दे दे, अपना जिक्र छोड़ दे मेरे पास। तो ये उससे सफर शुरू हो गया आगे का। अब इसमें तरके सफर की फजीलत बयान की है, असल नुक्ता वो है जिसको हम मानेंगे नहीं कभी। वो इस सारे सफर को नेगेट करते हैं मोहम्मद इब्ने अरबी। क्या गुनाह, क्या सवाब, क्या रब का कुर्ब, कुछ नहीं, सिर्फ मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा आका मुझसे राजी हो जाए, बस। न दोस्ती की तमन्ना, न किसी और चीज की, सिर्फ ये कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। जब बंदगी रब की इस नियत से कोई करता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए क्योंकि वो मालिक है, वो आका है, मेरा आका मुझसे राजी रहना चाहिए, तो ये तरके सफर हो गया। फिर इन चीजों से बालतर हो गया इंसान। इसलिए इसकी फजीलत ज्यादा बयान की है मोहम्मद इब्ने अरबी ने। तो उनकी किताब जो रूहानी असफार हैं उसका यह हिस्सा, इसका ये मतलब निकलता है। इसको फर्दर एलेबोरेट किया जा सकता है, इस पर एक एक जो हिस्सा है सफर का इसको फर्दर हम बोल सकते हैं जितना चाहें इस पर, इसलिए कि इसमें गुंजाइश बहुत है। मैं अपना नहीं कह रहा कि मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोलूंगा, मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन इसमें गुंजाइश इतनी है उनकी इस बात की, इतनी गहरी बात है इसमें, विजडम इतनी है कि सिर्फ इसी हिस्से को अगर हम पकड़ लें, उस तक सफर, तो वो सफर कैसे तय होगा, उसके आदाब क्या होंगे, सिर्फ उसी पर अगर बोला जाए तो कई घंटे बोला जा सकता है उस पर। तो ये तो आपका, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है, तो आपके वक्त पेश नजर میں نے مختصراً جتنا میں عرض کر سکا کر دیا. لیکن یہ میں عرض کر دوں ایک آخر میں پھر کہ روحانی یا علمی سفر کی ابتدا میں ایسے سٹالورٹس کی کتابیں مت پڑھیے, ہمارے بس کی نہیں ہے, کیونکہ ان کی علمی سطح بہت بلند ہے. تو وہ ایسی ٹرم استعمال کر دیں گے, ہم بھٹکتے رہیں گے کہ یہ تھا کیا. پہلے اور کچھ نہیں تو جس علم کے جس مقام پر وہ ہیں اس کے 50% تک ہم چلے جائیں, تاکہ کہیں کچھ تو سمجھ آ جائے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. لوگ بہت ضد کرتے رہتے ہیں کہ حروف مقطعات کی بات کریں, تو حروف مقطعات کا مسئلہ تو یہ ہے, اس کی بات کر لیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, لیکن اگر ایک ہی حروف مقطعات میں سے ایک حرف پکڑ لیا, مثال دے رہا ہوں, کوئی سا ایک حرف پکڑا جا سکتا, سواد پکڑ لیجئے, سواد کے بارے میں محمد ابن عربی جیسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وسعت اتنی ہے کہ سواد کے دو کونے ہیں جہاں سے سواد بینڈ لیتا ہے, ایسے یہاں سے شروع ہو کے اور جہاں اس کا یہ سرا آخری آتا ہے, کہ اگر پیدل چلنا شروع کرے تو اس کی وسعت اتنی ہے کہ پورا 12 گھنٹے کا ایک دن چاہیے اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے پیدل, اس کی وسعت یہ ہے. اگر اس کو بیان کر دیا جائے کہ اس کے مطلب کیا ہے سواد کا, اس کے معنی کیا ہیں, یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے, تو مجھ جیسے لوگ تو ویسے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے کہ یہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ اس خوف کے مارے کے حساب کیسے دیں گے, وہ زندہ رہنے سے انکار کر دیں گے کہ یا باری تالا زندہ رہ کے کروں گا کیا, اس کا حساب کون دے گا. تو یہ انہی اولیاء اکرام کو دکھایا جاتا ہے جو ولایت کے بڑے درجے پر جا پہنچے, تو وہاں حروف مقطعات کو وہ دیکھتے ہیں لوح محفوظ پر لکھا ہوا, تو اس کے معنی ان کو سمجھ آنے لگتے ہیں. انسان کا علم کا ایک مقام جب تک آ نہ جائے ایسی چیزوں کو ہاتھ لگائیے نہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر میں کلاس 1 میں ہوں تو الف بے کا قاعدہ ہی میں پڑھتا رہوں, تاکہ میں وہ سیکھ لوں کہ الفابیٹس کیا ہیں. تو ایسے ہی میں ڈاکٹر عبدالسلام کی فزکس کی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگوں گا تو ہجے کر کے شاید پڑھ تو لوں میں, لیکن پلے کچھ نہیں پڑے گا. یہ سوال میں اصل میں خود ہی نہیں سمجھ سکا, یہ ایگزیکٹلی وہ ہو گیا میرے ساتھ جو ابھی میں ایکسپلین کر رہا تھا. یہ سوال خاصا عالمانہ ہے, میری ذہنی سطح سے کہیں بلند, تو میں اسے سمجھ نہیں پایا. اگر ایک مہربانی یہ فرمائیں کہ اس کو ایلیبوریٹ کر دیں آسان لفظوں میں. سوال جن صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کیا انسان ایک وقت میں ایک سے زیادہ کیپیسٹیز میں فال کرتا ہے, اگر کرتا ہے تو ایسا کیا کیا جائے, कि एक कैपेसिटी दूसरी कैपेसिटी में मिक्स ना हो. इसको प्लीज अगर एलेबोरेट कर दें फर्दर, आप क्या पूछ रहे हैं तो मैं शायद जवाब दे पाऊं. तो यहीं साहब का दूसरा सवाल है कि इस्लाम में किस राय की अहमियत ज्यादा है, फर्द वाहिद की या एक जमात की. बड़ी सादा सी एक बात है. मुशावरत को इस्लाम में बहुत ही बुनियादी अहमियत हासिल है. रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म में भी यकता हैं, सवाए रब के उनसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं. आपने भी इसको एक्सरसाइज किया है लोगों को तालीम देने के खातिर कि अपने सहाबा से मशावरत ज़रूर फरमाते रहें. और ऐसे कई मौके आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाती राय को एक तरफ रख दिया, सहाबा की राय पर अमल किया. तो अगर उसको हम देखें तो मशावरत का जो मयार मुकर्रर किया अरब इस्लाम में वो ये है कि मशावरत शहर के अहले दानिश और अहले इल्म के साथ किया जाए, जिनकी इल्म व हिकमत और अक्ल व दानिश और परहेजगारी और तकवा, इस पर सारे मुसलमान मुत्तफिक हों कि ये साहबुर राय शख्स हैं, तो उनसे मशवरे का हुक्म दिया गया. तो इससे बात बहुत वाज़े हो जाएगी कि इस्लाम में किसी जमात को अहमियत है मशवरे में, या साहिब राय होने को, साहिब इल्म, साहिब इल्म व हिकमत, साहिब तकवा और परहेजगार होने की अहमियत है. किसी साहब ने एक सवाल पूछा कि आपने ये मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाया है कैसे हासिल किया, इस राह पर चलने के लिए मुझ गुनाहगार को क्या करना चाहिए, आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट, एक दिन इस राह पर चलने की ठानता हूँ और फिर भटक जाता हूँ, इस्तकामत और कंसिस्टेंसी कैसे हासिल होती है. भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो गए. मेरी दयानतदाराना राय अपने बारे में ये है कि मैं दुनिया का सबसे गुनहगार तरीन शख्स हूँ. आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो मुझसे गुनहगार दूसरा दिखाई नहीं देगा आपको. मेरी क्या हैसियत है आप मुझे आइडियलाइज न कीजिए, सवाए गुनाहों के और क्या मिलेगा मुझे आइडियलाइज करके. आपने आइडियलाइज करना है तो एक हस्ती मैं अर्ज कर देता हूँ जिनसे मैं क्लास 5 से इश्क पाले हुए हूँ और वो इश्क आज भी जारी है मेरा, वो हैं हजरत अली करमल्ला वजहो. मैं अकीदे के लिहाज से जनाब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह साहब का पैरोकार हूँ, लेकिन इश्क मेरा हज़रत अली करमल्ला वजहो के साथ है. तो उनको आइडियलाइज कर लीजिए, आप आसानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक जा पहुँचेंगे, बहुत आसानी से पहुँचेंगे आप वहाँ. और वहाँ एक बार जब जो शख्स पहुँच जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक, तो समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तक पहुंचा देंगे. किसी ने सवाल पूछा कि अल्लाह की बुरहान क्या है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह से बचाती है, क्या आम गुनहगार इंसान अल्लाह की बुरहान का मुशाहिदा कर सकता है, अगर कर सकता है तो उसके लिए क्या तदबीर करना होगी कि इंसान गुनाही से बच जाए। बहुत आसान काम है, हम में से जो भी चाहे इस बुरहान का मुशाहिदा तो मैं नहीं कहता लेकिन इस बुरहान को एक्सपीरियंस कर सकता है। वो ये है कि अगर हम गुनाह से तौबा कर लें और इरादा तहिया कर लें अपने साथ भी अपने रब के साथ भी कि हम गुनाह नहीं करेंगे और रब ताला से ये दरख्वास्त कर लें कि या बारी ताला मैं कमज़ोर हूँ, मेरे कदम लड़खड़ा जाते हैं, मेरी मदद फरमा और मुझे गुनाहों से महफूज रख, मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ। तो ये बात मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि अल्लाह की बुरहान को आप एक्सपीरियंस कर लेंगे कि पता ही चलेगा कि जहां आप गुनाह करने लगे वहां रब ताला ने कुछ इस तरह की रुकावटें डाल दी, कुछ मामलात ऐसे कर दिए कि आप या तो गुनाह की जगह पर जा ही नहीं सके या गुनाह कर नहीं सके। तो यूं इंसान एक्सपीरियंस करने लगता है। और वैसे भी हर शख्स हम में से कमज़ोर है, हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं, ये सिर्फ आप ही नहीं हैं, सभी हम ऐसे ही हैं इंसान जो ठहरे। तो बजाय तमाम की तमाम जिम्मेदारी और बोझ खुद उठाने के तो अपने जिम्मे कोशिश का पहलू रख लीजिए और अल्लाह ताला से न सिर्फ ये कि अपने आप को उसकी पनाह में दे दें बल्कि उससे मदद मांग लें, ये कह के ये इकरार करके अपने बारे में कि या बारी ताला मैं कमज़ोर हूँ, गुनाहों से बचना चाहता हूँ, मेरी नियत है, तो दिलों के हाल जानता है, लेकिन कमज़ोर हूँ, कदम लड़खड़ा जाते हैं, मेरी मदद फरमा दे और मुझे गुनाहों से महफूज रख ले, मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ। तो ये मदद आप खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे कि किस तरह से रब ताला हम सबको गुनाहों से बचा लेता है। किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि आई डोंट आस्क फॉर मच एक्सेप्ट अल्लाह फ्रेंडशिप एंड हिज फॉरगिवनेस, व्हाट शुड आई डू टू बी ए गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन, हाउ कैन आई मीट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी थोड़ी देर पहले मैं अर्ज कर रहा था कि जब तर्क सफर कर ले इंसान रब ताला को एक बात अर्ज कर दे कि या बारी ताला मैं हूं तो तेरा गुनहगार बंदा, तेरा आजिज बंदा, लेकिन तू दिलों के हाल जानता है, तू जानता है कि मैं तुझे अपना आका अपना मौला समझता हूं, मुझे तू सिर्फ अपनी जात अता फरमा दे, अपना आप अता फरमा दे तू। तो जब हम रब ताला से ये मांगने लगते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि वो रब है, उसकी शान रबूबियत ही ये है कि वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता, तो मायूस नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक अमली सबूत देना पड़ेगा इस बात का कि मैं तुझे अपना आका मानता हूं, तुझे अपना मालिक समझता हूं, तुझे अपना खालिक समझता हूं और तुझे अपना पालने वाला समझता हूं। तो जब हम उसको ये कहते हैं तो अपने एक एक फेल से हमें ये साबित कर देना होगा कि हम तेरी इताअत करते हैं, सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं, ये दुनियावी माल उजर, ये जायदाद, ये रुतबा, ये हमारी ठोकरों पर पड़ा है, इनकी हैसियत हमारे लिए कंकर से ज्यादा नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव करना होगा। और जब हम अल्लाह से उसकी जात मांगते हैं, उसकी दोस्ती मांगते हैं, तो याद रखिए कि ये राह बड़ी कठिन है, इस पर मुश्किलात भी बहुत आएंगी, तकलीफ भी बहुत आएंगी। और हम चूंकि कमजोर हैं तो आम तौर पर उसे बर्दाश्त कर नहीं पाते हम। ये बहुत पुरानी बात है, मे बी अबाउट 25 ईयर्स बैक। इसी कमरे में एक साहब तशरीफ लाए, और भी उनके साथ लोग थे चार पांच, तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि देखिए शाह साहब, मैं कोई ऐसी दुआ नहीं कराने आया कि मेरा बिजनेस चल जाए, मुझे तरक्की मिल जाए या मुझे कोई दौलत मिल जाए। अल्लाह का करम है मेरे पास, अल्लाह का दिया सब है, मेरी मिले भी हैं, दौलत भी है, इज्जत भी है, स्टेटस भी है, सब है, मैं तो सिर्फ रब से दोस्ती मांगने आया हूं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये दावा न कीजिए, बहुत टॉल क्लेम है ये, आप मुझे जानते ही नहीं शाह साहब, मैं तो आया ही इस नियत से हूं, और आप ये बताइए कि दोस्ती लेके दे सकते हैं या नहीं लेके दे सकते। तो मैंने कहा भाई ये तो दावा कोई भी नहीं कर सकता, रब तो मर्जी का मालिक है, जिसे चाहे दोस्त बना ले, जिसे चाहे न बनाए। अलबत्ता मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि सुबह शाम ये पढ़ लिया कीजिए, और ज्यादा नहीं है, एक एक तस्बीह पढ़िए। तो जब ये 40 दिन पढ़ लें तो फिर तशरीफ ले आइए मेरे पास, फिर आपसे बात करते हैं। तो वो चले गए, और एग्जैक्टली एक वीक के बाद इतवार ही की शाम को वो दोबारा यहीं इसी कमरे में तशरीफ ले आए, और वर्चुअली दोनों हाथ बांध के उन्होंने कहा कि ये वापस ले लें, मुझे नहीं चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होता है जो कुछ होने लगा मेरे साथ। तो ये आज फिर आपने इतना टॉल क्लेम कर लिया, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे, अल्लाह आपको अपनी दोस्ती अता फरमा दे, लेकिन राह बड़ी कठिन है, इस पर इंसान चल नहीं पाता। इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।